ग्रिम नियम। आज ध्वनि परिवर्तन संबंधी कितने ही नियम बन चुके हैं, किंतु भारूपी परिवार की भाषा ध्वनियों से संबंधित एक ध्वनि नियम सर्वाधिक प्रसिद्ध है, जो ग्रिम नियम के नाम से उल्लेखनीय है। इस नियम का निर्माण जर्मनी की प्रसिद्ध भाषा शास्त्री जेकब ग्रिम ने किया था। ग्रिम के पिता जर्मन में एक वकील थे और ग्रिम ने संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, गॉथिक, जर्मन आदि भाषाओं का विशेष अध्ययन किया था। ग्रिम ने 1809 ईस्वी में एक जर्मन भाषा का व्याकरण लिखा था। उसमें पहले किसी भी ध्वनि नियम का संकेत न था, किंतु डेनी विद्वान रेस्मरस रॉस ने सर्वप्रथम अपने ग्रंथ में एक ध्वनि नियम की ओर संकेत किया। परिस्थितिवश वे तो कुछ कार्य न कर सके, किंतु ग्रिम महोदय ने रॉस के उसी संकेत को आधार बनाकर 1822 ईस्वी में अपने जर्मन व्याकरण के द्वितीय संस्करण में उस ध्वनि नियम को प्रकाशित करा दिया और वही नियम फिर ग्रिम नियम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। क सदोष नियम। पहले ग्रिम महोदय ने जिस ध्वनि नियम का उल्लेख किया था वह दोषपूर्ण था। उस दोषपूर्ण नियम का स्वरूप इस प्रकार था। संस्कृत, लैटिन, ग्रीक आदि में अघोष क त प, महाप्राण ह थ फ, सघोष ग द ब, गॉथिक, अंग्रेजी, डच, निम्न जर्मन आदि में महाप्राण ह थ फ, सघोष ग द प, अघोष क त प। उच्च जर्मन में सघोष ग द प, अघोष क त प, महाप्राण ह थ फ। इस सदोष नियम को स्मरण करने रखने का सूत्र है अ म स म सा सा म। ग्रिम महोदय के उक्त ध्वनि नियम में दो वर्ण परिवर्तनों का उल्लेख मिलता किया गया है। इनमें से प्रथम वर्ण परिवर्तन तो यह है कि संस्कृत, लैटिन, ग्रीक आदि भाषा वर्ग की अघोष, महाप्राण तथा सघोष ध्वनियाँ गॉथिक, अंग्रेजी, डच, विभिन्न जर्मन आदि भाषा वर्ग में क्रमशः महाप्राण, सघोष और अघोष ध्वनियों के रूप में परिवर्तित हो गई थी। द्वितीय वर्ण परिवर्तन यह है कि निम्न जर्मन भाषा की महाप्राण, सघोष और अघोष ध्वनियाँ उच्च जर्मन भाषा में आकर क्रमशः सघोष, अघोष और महाप्राण ध्वनियों के रूप में परिवर्तित हो गई थी। इस ध्वनि नियम में निम्नलिखित तीन दोष थे। पहला, काल दोष। ग्रिम के इस नियम में भिन्न भिन्न दो कालों से दो वर्ण परिवर्तनों को एक साथ रखा गया है, क्योंकि प्रथम वर्ण परिवर्तन ईसा से बहुत पहले प्रागैतिहासिक काल में ही हो गया था, जबकि द्वितीय वर्ण परिवर्तन जर्मनी भाषाओं में केवल ईसा के 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। दूसरा, क्षेत्र दोष। ग्रिम की इस ध्वनि नियम में जिन दो परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है उनमें से प्रथम वर्ण परिवर्तन का क्षेत्र तो अवश्य व्यापक था, किंतु द्वितीय वर्ण परिवर्तन का क्षेत्र इतना व्यापक न था जितना कि ग्रिम महोदय समझते थे, क्योंकि यह द्वितीय वर्ण परिवर्तन केवल निम्न जर्मन एवं उच्च जर्मन अर्थात जर्मन भाषाओं में हुआ था और इसका कोई आदिकालीन यूरोपीय भाषाओं में नहीं था। तीसरा, अपूर्णता। ग्रिम ने अपने उक्त ध्वनि नियम में जिन निम्न जर्मन और उच्च जर्मन भाषाओं में इस अद्वितीय वर्ण परिवर्तन का संबंध स्थापित किया है उनमें भी यह पूर्णता नहीं मिलती। यहाँ यह बात स्मरण रखने योग्य है कि जर्मन भाषा के दो भाग निम्न जर्मन और उच्च जर्मन किए गए हैं, वे केवल भौगोलिक आधार पर ही हैं, क्योंकि जर्मनी का उत्तरी भाग समतल है और दक्षिणी भाग पहाड़ी है। अतः उत्तर के समतल भाग में बोली जाने वाली भाषा को निम्न जर्मन कहते हैं और दक्षिण के पहाड़ी भागों में बोली जाने वाली जर्मन भाषा उच्च जर्मन कहलाती है। निम्न जर्मन की शाखाएं अंग्रेजी, डच, डेनी, नॉर्वेई, स्वीडी आदि भाषाएं हैं। अतः निम्न और उच्च जर्मन नाम भाषा की विशेषता या हीनता के आधार पर नहीं दिए गए हैं। ख, निर्दोष नियम। उक्त तीनों प्रकार के दोषों के कारण ग्रिम का पहला ध्वनि नियम सदोष माना गया है, परंतु इसमें से जर्मन भाषाओं से संबंधित द्वितीय वर्ण परिवर्तन को दूर करके केवल प्रथम वर्ण परिवर्तन संबंधी ध्वनि नियम को पुनः ग्रिम नियम के नाम से प्रकाशित कराया गया, क्योंकि इसी नियम का संबंध आदिकालीन भारोपी भाषाओं से था। यही एक निश्चित काल एवं निश्चित सीमा से संबंधित था और यही नियम आदिकालीन भारोपी भाषाओं पर पूर्ण रूप से लागू होता था। आजकल यही प्रथम वर्ण परिवर्तन संबंधी ध्वनि नियम ग्रिम नियम के नाम से प्रसिद्ध है। इसका स्वरूप इस प्रकार है, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि। अघोष क त प, शघोष ग द प, महाप्राण घ ध भ। गौथिक, अंग्रेजी, डच, निम्न जर्मन आदि में महाप्राण ह थ फ, अघोष क त प, शघोष ग द प। जैसे क संस्कृत में कह, लैटिन में क्यू यू ओ। त संस्कृत में त्रि, लैटिन में ट्रैस यानी टी आर ए एस। प संस्कृत में पितृ, लैटिन में पी ए टी आर पैटर। ग संस्कृत में गो। द संस्कृत में दश, लैटिन में डेसेम। ब फारसी में लब, लैटिन में लेबुना। घ संस्कृत में घंस यानी हस। ध संस्कृत में विधवा। भ संस्कृत में भातृ। ह अंग्रेजी में हु, गौथिक में हुआ। थ अंग्रेजी में थ्री, गौथिक में थ्रीज। फ अंग्रेजी में फादर, गौथिक में फैडर। क अंग्रेजी में काउ, जर्मन में कू। त अंग्रेजी में टेन, गौथिक में तेहम। प अंग्रेजी में लिप, गौथिक में थॉर्प। ग अंग्रेजी में गूज, गौथिक में गॉज। द अंग्रेजी में विडो। ब अंग्रेजी में ब्रदर, गौथिक में ब्रदर। ग्रिम नियमन के अपवाद। ग्रिम महोदय ने अपने ध्वनि नियम के कतिपय अपवादों का उल्लेख उपध्वनि नियम के रूप में किया है। वे उप नियम दो हैं। पहला, भारोपीय मूल भाषा के स्क यानी एस के, स्त यानी एस टी और स्प यानी एस पी संयोग में जब क त प व्यंजन आते हैं तब इनके स्थान पर कोई वर्ण परिवर्तन नहीं होता। जैसे लैटिन में पी आई एस सी ई एस यानी पिस्किस, गॉथिक में फिस्क्स, जर्मन में फिस्च। संस्कृत अस्त, लैटिन का ईस्ट ई एस टी, गॉथिक का आई एस टी, जर्मन का आई एस टी। दूसरा, भारोपीय मूल भाषा के त यानी के टी और त यानी पी टी संयोग में आए हुए व्यंजन त यानी टी के स्थान पर भी नियमानुसार कोई वर्ण परिवर्तन नहीं होता। जैसे लैटिन ओकेटो, गॉथिक अहोतो, जर्मन एच्ट, लैटिन कैप्टस, गॉथिक हैप्टस। ग्रासमान का नियम। यद्यपि ग्रिम महोदय ने अपने ध्वनि नियम के कतिपय अपवादों का उल्लेख स्वयं कर दिया था, तथापि ग्रिम नियम में और भी बहुत से अपवाद विद्यमान थे जिनका समाधान होना आवश्यक था। जैसे ग्रिम नियम के अनुसार संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के शब्दों में जहाँ द और ब थे वहाँ गौथिक के अंतर्गत क्रमशः त और प होने चाहिए थे, परंतु वहाँ त और प न होकर द और ब ही पाए गए जो उक्त ग्रिम नियम के विरुद्ध थे। जैसे संस्कृत में बोधति, गौथिक में ब्युधन। संस्कृत में दभ, गौथिक में डोप्स। जब ये अपवाद विद्वानों को दिखाई दिए तब इसका समाधान हेरमन ग्रासमान ने अपने ध्वनि नियम के द्वारा 1862 में किया। उसी ध्वनि नियम को ग्रासमान का नियम कहते हैं। ग्रासमान भी जर्मन भाषा को उद्भट विद्वान थे और संस्कृत एवं ग्रीक भाषाएं भी अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने संस्कृत दधामी, बभार आदि रूपों के ग्रीक में तिथेमी और पेफुका रूपों में तुलना करके यह निष्कर्ष निकाला कि संस्कृत, ग्रीक आदि भाषाओं के ऐसे शब्दों में जहाँ एक अल्पप्राण ध्वनि और दूसरी महाप्राण ध्वनि एक साथ मिलती है वहाँ पहले मूल भारोपीय भाषा में दो महाप्राण ध्वनियाँ ही थीं। अर्थात संस्कृत उक्त रूपों दधामी और बभार के मूल रूप क्रमशः धमामी और बभार थे। प्रायः दो महाप्राण ध्वनियों का एक साथ उच्चारण करना दुष्कर होता है, अतः कालांतर में इन दो महाप्राण ध्वनियों में से पहली ध्वनि अल्पप्राण हो गई और दूसरी महाप्राण बनी रही। अतः जहाँ संस्कृत बोधति का गौथिक में व्युदयन मिलता है, वहाँ बोधति के स्थान पर पहले बोधति शब्द रहा होगा, और जहाँ संस्कृत दव के स्थान पर गौथिक में देव्स मिलता है, वहाँ संस्कृत में पहले दव के स्थान पर धव शब्द रहा होगा। इसी कारण भ ध्वनि का ब और ध ध्वनि का द हो जाना पूर्णतया अग्रिम नियम के अनुकूल ही है, क्योंकि कालांतर में उक्त दोनों शब्दों में से बोध और धत् वहाँ प्राण ध्वनियों में से क्रमशः पहली पहली ध्वनियाँ अल्प प्राण हो गई हैं, जिससे बोधति और दब रूप हो गए हैं। बर्नर का नियम। यद्यपि ग्रासमान के नियम में से बहुत से अपवादों का समाधान हो गया था, तथा आप कुछ और ऐसे अपवाद मिले जिनका समाधान ग्रासमान के दोनों नियम के भी नहीं होता था, जैसे मूल भारोपी भाषाओं में ये संस्कृत ग्रीक लैटिन आदि भाषाओं के क त प का अग्रिम नियम के अनुसार क्रमशः ह थ फ होना चाहिए था, किंतु उनके स्थान पर क्रमशः ग द ब रूपांतर मिले। जैसे लैटिन में क सेवेनकस JUBENCUS, संस्कृत में युवक, गोथिक में जियक्स JUGGS, अंग्रेजी में यंग YOUNG यानी ग त, केंटम CENTUM, संस्कृत में शतम, गोथिक में हुंडा HUNDAA, अंग्रेजी में हंड्रेड HUNDRED यानी दे, प सेप्टम SEPTEM, संस्कृत में सप्तम, गॉथिक में सिबन SIBUN, अंग्रेजी में सेवन SEBEN, सेवन बे। उक्त अपवादों का समाधान डेनी भाषा के विद्वान कार्ल अडोल्फ वर्नर ने अपने एक ध्वनि नियम द्वारा किया, जिसका निर्माण 1875 ईस्वी में किया गया था और आज वर्नर का नियम कहलाता है। वर्नर ने पता लगाया कि मूल भारोपी भाषा की संस्कृत लैटिन ग्रीक आदि भाषाओं में क त प के स्थान पर गौथिक, अंग्रेजी आदि भाषाओं में ग्रिम नियम के अनुसार क्रमशः ह थ फ तभी होते हैं जब इन ध्वनियों के व्यवहारित पूर्व में कोई उदात्त स्वर होता है अथवा इन ध्वनियों के पूर्व स्वर पर बलाघात होता है। यदि इनके व्यवहारित पूर्व में कोई उदात्त स्वर नहीं होता और वो पीछे होता है, तब इनके बाद के स्वर का बलाघात होता है, तो क त प के स्थान पर क्रमशः ग द ब हो आते हैं। अब यदि उक्त उदाहरणों पता लगाए तो ज्ञात होगा कि लैटिन जेमिनकस या संस्कृत युवक शब्द में उदात्त स्वर या बलाघात सी के उपरांत आने वाले यू पर या क के उपरांत आने वाले ओ पर है। ऐसे ही लैटिन केंटम या संस्कृत शतम शब्द में उदात्त स्वर या बलाघात टी के पश्चात यू अथवा के पश्चात ओ पर है। इस प्रकार लैटिन सेप्टम या संस्कृत सप्तम शब्दों में उदात्त स्वर या बलाघात क्रमशः टी के पश्चात ई पर या त के पश्चात ओ पर है। ऐसी दशा में उदात्त स्वर या बलाघात के पीछे आने के कारण इन उदाहरणों में संस्कृत लैटिन आदि के क त प का गौथिक अंग्रेजी आदि में क्रमशः ग द ब ध्वनि परिवर्तन हुआ है। ग्रिम नियम के अनुसार क्रमशः ह थ फ नहीं हुआ है। इसके बिल्कुल विपरीत संस्कृत भातृ शब्द में उदात्त स्वर या बलाघात भाग के स्थान पर आ है, जो त से व्यवहित पूर्व में आता है। इस प्रकार संस्कृत भ्रातृ शब्द में विद्यमान त के स्थान पर अंग्रेजी में ब्रदर या गौथिक में ब्राथर हो जाता है, जो कि पूर्णतया ग्रिम के ध्वनि नियम के अनुसार परिवर्तन हुआ है। मिथ्या सादृश्य का नियम। वैसे तो ग्रासमान और वर्नर के ध्वनि नियमों द्वारा कितने ही अपवादों का समाधान हो गया, परंतु फिर भी कुछ ऐसे उदाहरण भारोपी भाषाओं में मिल गए जिनका समाधान उक्त दोनों नियमों द्वारा नहीं होता। जैसे संस्कृत पितृ शब्द में तो दातु सर या बलाघात त के स्थान पर री पर है, त से व्यवहित पूर्व ई पर नहीं, फिर भी अंग्रेजी में पितृ का रूपांतर फादर मिलता है, अर्थात यहाँ संस्कृत त के स्थान पर अंग्रेजी में थ हो जाता है, जो वर्नर के नियम के विरुद्ध है और एक विचित्र अपवाद है। उक्त अपवाद या समाधान मिथ्या सादृश्य या उपमान के नियम द्वारा होता है। इस अपवाद का कारण यह है कि उक्त परिवर्तन अर्थात संस्कृत पितृ का अंग्रेजी में फादर संबंधी ध्वनि परिवर्तन अंग्रेजी के ब्रदर शब्द के सादृश्य पर हुआ है। पुराने अंग्रेजी में तो फादर के स्थान पर फैडर रूप मिलता है, जो संस्कृत के त के स्थान पर द ध्वनि परिवर्तन पूर्णतया वर्नर के नियमानुकाल है, परंतु पीछे चलकर फैडर के स्थान पर फादर रूप केवल ब्रदर के सादृश्य पर प्रचलित हो गया। इस ई को मिथ्या सादृश्य नियम कहते हैं। तालव्य भाव का नियम। इस नियम का सर्वप्रथम उल्लेख थॉमसन ने 1875 ईस्वी में किया था। वैसे कुछ विद्वान इसे कॉलिच का ध्वनि नियम भी कहते हैं और इसका संबंध कॉलिच से जोड़ते हैं। तालव्य भाव का नियम यह है कि मूल भारतीय भाषाओं में पहले तीन प्रकार के क वर्ग ध्वनियाँ थे। कंठ तालव्य यानी क ख ग घ, शुद्ध कंठ यानी क ख ग घ और कंठोष्ठ क्व ख्व ग्व। इनमें से शुद्ध कंठ और कंठयोष्ठ ध्वनियाँ भारतीय रानी शाखा में कहीं तो कवर के रूप में और कहीं चवर के रूप में परिवर्तित हो गई। चवर के रूप में परिवर्तित होने का कारण यह था कि मूल भारतीय भाषा के कंठोष्ठ ध्वनियाँ के तुरंत पश्चात यदि ई या ए स्वर आए तो भारतीय रानी शाखा में ये ध्वनियाँ चवर्ग च या ज में परिवर्तित हो जाती हैं और यदि उक्त स्वर न आए तो वे कवर्ग में ही बनी रहती हैं। इसी को तालव्य भाव का नियम कहते हैं। जैसे मूल भारतीय भाषा के शब्द क्विंक्वे, भारत ईरानी भाषा के शब्द पंच यानी संस्कृत में औगेस, भारत ईरानी भाषा के शब्द में ओज, मूल भारतीय में किद, भारत ईरानी में चिद। उक्त उदाहरणों में प्रथम क्विंक्वे शब्द में कंठोष्ठ ध्वनि क्व के तुरंत पश्चात ए स्वर के आ जाने के कारण भारत ईरानी शाखा में आकर इसका रूपांतर पंच शब्द में च ध्वनि के रूप में हो गया है। इसी तरह दूसरे उदाहरण औगिस में कंठ ध्वनि ग के तुरंत पश्चात ए के स्वर आ जाने से भारत ईरानी शाखा में ऊ शब्द के अंतर्गत ज ध्वनि के रूप में परिवर्तन हो गया है। ऐसे ही तीसरे उदाहरण किद में शुद्ध कंठ ध्वनि क के तुरंत पश्चात ई स्वर के आ जाने से भारत ईरानी शाखा में इसका रूपांतर च ध्वनि के रूप में हो गया है। इनके अतिरिक्त जहां मूल भारतीय भाषा के कंठोष्ठ या शुद्ध कंठ ध्वनियों के तुरंत पश्चात ई या ए स्वर नहीं आते और कोई और आता है तो वहां इन ध्वनियों का रूपांतर तालव्य ध्वनियों में नहीं होता। जैसे मूल भारतीय शब्द भारत ईरानी शब्द कोस संस्कृत में कह, युगम का युगम। उक्त उदाहरणों में कोस शब्द में मूल भारतीय कंठोष्ठ ध्वनि क्व के तुरंत पश्चात ओ ध्वनि आई है और युगम शब्द में मूल भारतीय शुद्ध कंठ ध्वनि के तुरंत पश्चात ओ ध्वनि आई है। इसी कारण यहाँ न तो क्व का च हुआ है और न ग का ज हुआ है। तालव्य भाव के नियम की उपलब्धि। इस नियम के आविष्कार से पूर्व विद्वानों का विचार था कि भारतीय भाषा के केवल तीन मूल स्वर अ ई उ ही हैं। ग्रीक में यहाँ ए ओ स्वर मिलते हैं, यह संस्कृत की अध्वनि के रूपांतर माने जाते थे, परंतु जब से तालव्य भाव के नियम की खोज हुई है तब से विद्वानों का यह दृढ़ विचार बन गया है कि संस्कृत अ का रूपांतर ग्रीक से ए और ओ के रूप में नहीं हुआ है, अपितु ये भी मूल स्वर ही हैं जो अभी तक ग्रीक भाषा में सुरक्षित हैं और भारत ईरानी भाषाओं में आकर ये अध्वनि के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। अतः मूल भारतीय भाषा के तीन स्वरों अ ए ओ के स्थान पर संस्कृत अवेस्ता आदि भारत ईरानी भाषाओं में केवल एक स्वर अ ही मिलता है, जबकि ग्रीक भाषा में ये तीनों स्वर अ ए ओ विद्यमान हैं। अतः अब विद्वानों की यह स्पष्ट धारणा बन गई है कि भारतीय भाषा के अधिकांश मूल स्वर ग्रीक भाषा में और व्यंजन संस्कृत भाषा में विद्यमान हैं। ध्वनिग्राम नियम। जिस शास्त्र या विज्ञान में ध्वनिग्राम का वैज्ञानिक अनुशीलन किया जाता है उसे ध्वनिग्राम विज्ञान कहते हैं। इसके लिए अंग्रेजी में कई नाम प्रचलित हैं, जैसे फोनोमिक्स, फोनोमेटिक्स, फंक्शनल फोनोटिक्स आदि, परंतु सर्वाधिक प्रचलित नाम है फोनोमिक्स। हिंदी में भी इसे कई नामों से अभिहित किया गया है, ध्वनिग्रामिकी, स्वनग्रामिकी, ध्वनिश्रेणी विज्ञान, ध्वनि तत्व विज्ञान, ध्वनि मात्र विज्ञान, वर्ण विज्ञान, लिपि शास्त्र विज्ञान आदि, परंतु अब हिंदी में भी अधिक लोकप्रिय नाम है ध्वनिग्राम विज्ञान। आजकल भाषा विज्ञान की यह एक स्वतंत्र शाखा मानी जाती है, पहले आंग्ल भाषा शास्त्र इसे भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही मानते थे, परंतु अधिकांश विद्वान ध्वनिग्राम विज्ञान को ध्वनि विज्ञान से सर्वथा पृथक मानते हैं। वैसे ध्वनिग्राम विज्ञान का मूलाधार ध्वनि विज्ञान ही है, क्योंकि ध्वनि विज्ञान से इसे कुछ सामग्री उपलब्ध होती है या उसी का विश्लेषण एवं विवेचन करता हुआ विविध प्रकार के निष्कर्ष निकालता है। इस विज्ञान को प्रक्रिया यह है कि जिस भाषा का अनुशीलन किया जाता है सर्वप्रथम उसके शब्दों का संग्रह करते हैं, उस भाषा के पुरातन शब्दों का संकलन करके प्राचीन साहित्य से किया जाता है और वर्तमान शब्द उस भाषा को बोलने वाले से संपर्क स्थापित करके किया जाता है। इसके लिए ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समीप जाते हैं जो उस भाषा को अधिक से अधिक प्रकृत रूप में या तो बोलते या बोल सकते हैं, जिन पर किसी प्रकार का बाहरी प्रभाव नहीं होता। उस संकलित सामग्री को सामान्य लिपि में न लिखकर ध्वन्यात्मक लिपि में सूक्ष्म लेखन द्वारा अंकित किया जाता है। इस सामग्री को संकलित करते समय यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि किसी शब्द में कौन से ध्वनि स्वर है और कौन सी व्यंजन। यदि कोई ध्वनि स्वर है तो वह कौन सा स्वर है और कैसा स्वर है, जपित है या ह्रस्व है, या दीर्घ है या समृत है, विवृत है या अग्र है या पश्च है आदि। ऐसे ही यदि कोई ध्वनि व्यंजन है तो उसे भी स्थान एवं प्रयत्न के आधार पर विश्लेषण करके अंकित करना चाहिए। इस तरह सूक्ष्मता के साथ सामग्री का संकलन करके संग्रहित शब्दों के आधार पर इनमें प्रयुक्त ध्वनियों की सूचियां तैयार करनी चाहिए। ये सूचियां स्वरों की पृथक और व्यंजन की पृथक रहनी चाहिए। तत्पश्चात यह विश्लेषण करना पड़ता है कि इन ध्वनियों में से कितने ध्वनिग्राम है और कितनी समध्वनियां। कभी कभी दो ध्वनियां ऐसी होती हैं कि वे ध्वनिग्राम जान पड़ती हैं और समध्वनियां प्रतीत होती हैं, उन्हें संदिग्ध युग्म कहते हैं। ऐसे ध्वनियों को एक संदिग्ध वर्ग में रखा लिया जाता है। कुछ ध्वनियाँ ऐसी भी मिलती हैं जिनमें परस्पर बहुत कम अंतर होता है और उनके अर्थ भिन्न होते हैं। ऐसी ध्वनियों को न्यूनतम विरोध युग्म कहते हैं, इन्हें पृथक वर्ग में रख लिया जाता है। इस प्रकार किसी भाषा के शब्दों में प्रयुक्त ध्वनियों का विश्लेषण एवं परीक्षण करके यहाँ यह देखा जाता है कि कौन सी ध्वनि ध्वनिग्राम है और कौन सी संध्वनि। उसी को ध्वनिग्राम विज्ञान कहा जाता है। इस ध्वनिग्राम विज्ञान में किसी भी मृत या जीवित भाषा की ध्वनियों का स्वतंत्र परीक्षण किया जाता है और उस भाषा की प्रतिनिधि ध्वनियों के समूचे ढांचे को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इतना ही नहीं, ध्वनिग्राम विज्ञान किसी भाषा के विपुल ध्वनि संप्रदाय में से प्रतिनिधि ध्वनियों का निश्चय करता है। किसी एक ध्वनि नियम के विभिन्न सदस्यों के रूप में व्यवहित संध्वनियों का पता चलता है और ध्वनिग्राम एवं संध्वनि के विद्यमान अंतर को स्पष्ट करता है। ध्वनिग्राम ध्वन्यात्मक दृष्टि से समान भाषण ध्वनियों के वर्ग को ध्वनिग्राम कहते हैं। इसे अंग्रेजी में फोनीम कहा जाता है। ब्लूमफील्ड का मत है कि किसी भाषा में उपलब्ध ध्वनिग्राम ध्वनियाँ नहीं होते, अपितु वे ध्वनि वैशिष्ट्यों के समूह होते हैं और उन्हें विभेदक ध्वनि वैशिष्ट्यों की लघुतम इकाई कह सकते हैं। ग्लीसन का भी यही विचार है कि ध्वनिग्राम उन ध्वनियों का एक वर्ग होता है जो ध्वन्यात्मक दृष्टि से समान होती हैं और जो भाषा में विभेद का विशिष्ट आधार प्रस्तुत करती है। इस प्रकार ध्वनिग्राम विभेदक होता है, उसमें किसी भाषा के अंतर्गत अर्थ भेद करने की क्षमता होती है। जैसे हिंदी में थान और दान दोनों शब्दों के अर्थ भेदक थ और द हैं, अतः थ और द ध्वनिग्राम है। दूसरे ध्वनिग्राम की सत्ता मानसिक यथार्थ होती है। तीसरे, एक भाषा के ध्वनिग्राम वितरण की दृष्टि से परस्पर व्यतिरेकी का विरोध होते हैं। चौथे, किसी एक भाषा के ध्वनिग्राम ध्वन्यात्मक दृष्टि से परस्पर नहीं मिलते। पांचवें, किसी भाषा के ध्वनिग्राम उसके महत्वपूर्ण अंग होते हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि ध्वनिग्राम किसी भाषा की वह ध्वन्यात्मक इकाई है जो अर्थभेदक होती है, जो भौतिक यथार्थ न होकर मानसिक यथार्थ होती है और जिसकी कई संध्वनियाँ होती हैं। संध्वनियाँ, जहाँ समान भाषण संध्वनियों का वर्ग ध्वनिग्राम कहलाता है, वहाँ किसी एक ध्वनिग्राम में व्यवहारित समान भाषण ध्वनियाँ संध्वनियाँ कहलाती हैं। एक ध्वनिग्राम में अनेक ऐसी संध्वनियाँ होती हैं जो ध्वन्यात्मक दृष्टि से समान होती हैं, जो अर्थभेदकता में असमर्थ होती हैं और वे या तो परस्पर प्रतिपूरक होती हैं या मुक्त विकिरण में होती हैं। जैसे थ एक ध्वनिग्राम है, परंतु यह थ कहीं किसी शब्द के आदि में आ सकता है जैसे थान, कहीं मध्य में आ सकता है जैसे हथौड़ा, और कहीं अंत में आ सकता है जैसे हाथ। ऐसे ही कभी यह दो स्वरों के मध्य आ सकता है, कभी इनकी पार्श्ववर्ती स्वर ह्रस्व दीर्घ या दीर्घ ह्रस्व हो सकते हैं, कभी वे अग्र पश्च आदि हो सकते हैं, कभी यह थ एकाक्षरी या अनेकाक्षरी शब्दों में आ सकता है, परंतु प्रत्येक स्थिति में यह उच्चारण की दृष्टि से परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि प्रत्येक परिवर्तित स्थिति के साथ यह एक पृथक एवं विशिष्ट ध्वनि के रूप में उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार एक ही ध्वनिग्राम थ अपने अनेकानेक परिवर्तित स्थितियों के साथ जब पृथक पृथक एवं विशिष्ट भाषण ध्वनियों के रूप में आता है, तब यह भाषण ध्वनियाँ संध्वनियाँ कहलाती हैं, जो ध्वन्यात्मक दृष्टि से समान होती है, अर्थभेदकता में भी असमर्थ होती हैं और वे आपस में या तो प्रतिपूरक होती हैं या मुक्त वितरण में होती हैं। ध्वनिग्राम और संध्वनियों का अंतर। ध्वनिग्राम और संध्वनियों में निम्नलिखित अंतर देखा जाता है। पहला, किसी भाषा विशेष के ध्वनिग्राम में उस भाषा के शब्दों में अर्थभेद करने की शक्ति होती है, जबकि संध्वनि में यह शक्ति नहीं होती, क्योंकि किसी शब्द में एक संध्वनि के स्थान पर दूसरी संध्वनि का प्रयोग करने पर भी उस शब्द के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा, ध्वनिग्राम का अस्तित्व मानसिक यथार्थ होता है, जबकि संध्वनियों का अस्तित्व भौतिक यथार्थ या वास्तविक होता है, क्योंकि संध्वनियों के आधार पर ही किसी ध्वनिग्राम के रूप का यथार्थ बोध होता है। तीसरा, ध्वनिग्राम तो एक समूह या समुदाय के रूप में होता है, जबकि संध्वनियों को समुदाय के सदस्य के समान कह सकते हैं। जैसे किसी एक समुदाय में अनेक सदस्य होते हैं, वैसे ही किसी एक ध्वनिग्राम में अनेक संध्वनियाँ उस समुदाय के सदस्य के समान होती हैं। चौथा, किसी एक भाषा के ध्वनिग्राम वितरण की दृष्टि से परस्पर व्यतिरेक या विरोधी होते हैं, जबकि एक ध्वनिग्राम की संध्वनियाँ परस्पर या तो परिपूरक वितरण में होती हैं या मुक्त वितरण में। इसका तात्पर्य यह है कि दो संध्वनियाँ यदि एक ही स्थिति में आएँ और अर्थ में परिवर्तन न लाएँ तो उनका वितरण मुक्त होता है, और यदि दो संध्वनियाँ विभिन्न स्थितियों में आएँ और एक स्थिति में आने पर अर्थ में कोई परिवर्तन प्रस्तुत कर सके तो उनका वितरण परिपूरक वितरण कहलाता है। जैसे बार बार युग में रोल मुक्त वितरण है, क्योंकि स्थिति एक होने पर भी अर्थ में कोई भेद नहीं है, और अंग्रेजी में लव और कोल्ड में एक ही ल ध्वनि दो भिन्न स्थितियों में आई है और ध्यान से सुनने पर दोनों का भेद भी स्पष्ट सुनाई पड़ सकता है, परंतु ये दोनों परिपूरक वितरण में हैं। पांचवा, किसी भाषा के ध्वनिग्राम को ध्वन्यात्मक दृष्टि से परस्पर नहीं मिलते, किंतु उनकी ध्वनिग्राम की संध्वनियाँ ध्वन्यात्मक दृष्टि से परस्पर मिलती जुलती होती हैं। छठा, किसी भी ध्वनिग्राम का भाषा में विशेष महत्व होता है, जबकि संध्वनियाँ उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। सातवां, ध्वनिग्राम अनुमेय नहीं होते, जबकि संध्वनियाँ सदैव अनुमेय होती हैं। ध्वनिग्राम के भेद। मूलतः ध्वनिग्राम के दो भेद होते हैं, खंड ध्वनिग्राम और खंडेतर ध्वनिग्राम। क, खंड ध्वनिग्राम, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप में हो सकता है उन्हें खंड ध्वनिग्राम कहते हैं। खंड ध्वनिग्राम के दो भेद होते हैं, स्वर ध्वनिग्राम और व्यंजन ध्वनिग्राम। इनमें से स्वर ध्वनिग्राम 11 प्रकार के होते हैं। पहला, केंद्रीय स्वरग्राम 10 हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, आए, ओ, औ। दूसरा, अकेंद्रीय स्वरग्राम 1, अ। ऐसे ही व्यंजन ध्वनिग्राम 40 प्रकार के होते हैं। पहला, केंद्रीय व्यंजन ग्राम 35, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ळ, त, थ, द, ध, न, न, प, फ, ब, भ, म, मह, य, र, ल, ल, व, श, स, ह, ळ, ळ। दूसरा, अकेंद्रीय व्यंजन ग्राम 5, क, ख, ग, ज, फ। ख, खंडेतर ध्वनिग्राम, जो ध्वनिग्राम अपने उच्चारण के लिए खंड ध्वनिग्राम पर निर्भर होते हैं अथवा जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में नहीं हो सकता, ऐसे खंडग्राम से इतर या भिन्न ध्वनिग्रामों को खंडेतर ध्वनिग्राम कहते हैं। खंडेतर ध्वनिग्राम 5 प्रकार के होते हैं। पहला, दीर्घता, इसे अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं। हिंदी में व्यंजकों की दीर्घता प्रायः ध्वनिग्रामिक ही होती है, जैसे हिंदी में कुछ न्यूनतम विरोधी युग्म इस प्रकार मिलते हैं, बच्चा बच्चा, सजी सज्जी, पिला पिल्ला, बला बल्ला, गदा गद्दा, पता पत्ता आदि। दूसरा, अनुनासिकता, इसे अंग्रेजी में नेशनलाइजेशन कहते हैं। हिंदी में स्वरों की अनुनासिकता भी ध्वनिग्रामिक होती है, जैसे इसके न्यूनतम विरोधी युग्म हिंदी में इस प्रकार मिलते हैं, पूंछ पूंछ, गूंद गूंद, सांस सांस, सवार सवार, साग साग आदि। तीसरा, बलाघात, इसे अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं। वाक्य के स्तर पर बलाघात ये ध्वनि ग्रामिक होता है। जैसे हिंदी में न्यूनतम विरोधी वाक्य इस प्रकार मिलते हैं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। चौथा अनुतान, इसे अंग्रेजी में इंटोनेशन कहते हैं और हिंदी में इसे सुर लहर भी कहा जाता है। वाक्य के स्तर पर अनुतान भी ध्वनि ग्रामिक होता है। जैसे हिंदी में इसके न्यूनतम विरोधी वाक्य इस प्रकार मिलते हैं, मोहन सो गया, मोहन सो गया, मोहन सो गया। पांचवा संगम, इसे अंग्रेजी में जंक्चर कहते हैं, यह संगम भी ध्वनि ग्रामिक होता है। जैसे इसके भी कुछ न्यूनतम विरोधी युग्म हिंदी में इस प्रकार मिलते हैं, जैसे पीली पीली, खाली खाली, तुम्हारे तुम्हारे। इस प्रकार हिंदी में कुल ध्वनिग्रामों की संख्या 56 है, जिनमें से खंड ध्वनिग्राम 51 भेद होते हैं। पहला स्वर खंडग्राम के 11 भेद, केंद्रीय 10 और अकेंद्रीय 1, तथा दूसरा व्यंजन खंडग्राम के 40 भेद, केंद्रीय 35 और अकेंद्रीय 5, और खंडेतर ध्वनिग्राम 5 प्रकार के होते हैं। इनमें से हिंदी में अधिकांश लोग अकेंद्रीय व्यंजन खंडग्रामों क ख क ख ग ज फ का प्रयोग नहीं करते, इनके स्थान पर क ख ग घ ग ज फ का ही प्रयोग अधिक होता है, जैसे कलम, डाकखाना, बेगम, जरूरत, फरमान आदि।